अब यहां पे ये जो मैयत के वारिस और कर्ज की बात हुई ना, थोड़ा सा मैं इसको अपने लफ्जों में कुछ चीजें जो तफसीर क्लास में होती हैं, लेकिन ये टॉपिक एक एज अ टॉपिक है तो इसमें बात करनी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो आज के दौर का स्टाइल ऑफ लिविंग है, बकौल लोगों के कि हर शख्स कर्जों में, एक शख्स मरता है, इमेजिन कीजिए एक शख्स मरा, उसने अपनी जिंदगी में एक घर कर्ज पे लिया, 3 लाख कर्ज था, ठीक है, जिससे 50,000 वो दे चुका किस्तों में, अभी 2.5 लाख देना है, बात समझ गए, कैश और कारोबार में जो भी उसका पैसा लगा हुआ था 1 लाख था, यानी कैश की सूरत में या वट एवर जो भी कैश के जे के उसके बच्चों को मिला। अब बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, आप मुझे बताइए हर बेटे को बेटी से कितना मिलेगा या क्या होगा। मैं हिसाब पूरे नहीं पूछती क्योंकि ये हमने डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मेरा सवाल समझ गया तो इसका जवाब आपको समझ आ गया होगा।
बेटे
बेटे
को कम
को
मिलता है
आपने कहा, बेटी को बेटे का हाफ मिलता है
जी,
जी।
किस्मत में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि
अब आप मुझे बताइए कि जिस शख्स के पास 1 लाख है छोड़ के गया, 2.5 लाख का कर्ज है, सबसे पहले उसकी विरासत में क्या होगा, मिम्बाद ही वसीयत, वसीयत कोई नहीं की, निकाल देते हैं, अव दैन, दैन। अब दैन देखा तो वो कितना रह गया कि
ज्यादा
घर था 2.5 लाख का, 1 लाख था, फिर से 1.5 लाख फिर रहता है, अब क्या करेंगे, वी नीड टू सेल दैट हाउस। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर किसी को ये बातें समझ आ गई है ना, तो होगा क्या, प्रैक्टिकल चीज बता देती हूँ आपको। इधर कोई मरा, इधर 3 दिन के बाद उसका घर फॉर सेल जाएगा, फॉर क्लोजर कह ले या सेल कह ले या कंप्र, वो पैसे बिक के उसका कर्ज अदा होगा ताकि वो तो आराम से जन्नत में पहुंचे। आप कहते हैं हाय बाप भी मर गया, बच्चों को भी बेघर कर रहे हैं, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, आप दुनिया का घर ले लें तो आपके अब्बा जी जन्नत में जाने से रुके। मैं हदीस तो आपने पढ़ ली है ना, क्या वो मौलक रहती है। अब मुझे आप इसका जवाब दीजिए, जरा इसका जवाब है आज सोसाइटी के पास, लोग क्या करते हैं। अब इसको फिर मेरे साथ चलिए, सेम केस को आगे लेके चलते हैं। एक शख्स मरा, 1 लाख बेचा, 1 लाख का कर्ज था। अब पहली सूरत में क्या होता है कि वो घर बीवी और शौहर के नाम होता है, इधर गालिबन वो घर की पेमेंट्स भी बीवी को देनी पड़ती है, ऐसी है या मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रही हूँ। अब वो बीवी कर्ज वो घर अपने नाम डाल लेती है, यानी गोया कि अब वो माँ की मिल्कियत, 1 लाख को मेरे हाले बांट देते होंगे बच्चों में बीवी में। अब आप हुआ क्या कि हर महीने उस बीवी को उसके कर्ज को देने की पड़ेगी ना जरूरत, क्या ये फेयर डील है। बीवी नहीं रही, बीवी भी नहीं, बच्चे हैं, बाप ने कर्ज से घर लिया हुआ था, तो फिर डेफिनेटली फिर क्या होगा, बच्चे लेंगे वो घर। आमतौर पर यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, कोई मर जाए तो उसकी जायदाद बच्चों में जाती है, ये क्या होती है, वेल ना लिखी हो तो सब कुछ गवर्नमेंट को मिलता है, ये तो मुझे भी पता है अच्छी तरह जी। वाइफ को मिल गया, वाइफ नहीं है तो किसको मिलता है। अब आप कोई भी सूरत, इधर से नाक पकड़े, इधर से पकड़े, इधर से घुमा के पकड़े, सबसे फेयर डील क्या है, अगर एक बाप ने कर्ज लिया वो खुद भुगते है। ये मैंने उसमें सुनाया हुआ वाक्य, मुझे लगता है आप खुद ही सुन लेंगे सबीलुल जन्ना में, किसी भी साल में पूरे लिटरल मेरे से सवाल पूछा था तो मैंने उनको ये सेम यही सिचुएशन थी उनकी। गिले शिकवे क्या होते हैं, आप देखिए ना, बाप है और भाई है, मिलके कारोबार कर रहे हैं, कारोबार रन किया, बट अब कारोबार रन किया तो ये हॉल भी आपने लोन पे खरीदा, ये आपका तो नहीं है ना, आपने इंटरेस्ट पे ये खरीदा, सारी मशीनें आई जिस जिस जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो सारी किस्तों पे लीज पे चल रही हैं। खैर कारोबार चलता गया, बाप और भाई साथ काम कर रहे, बाद में बाप की डेथ हो गई, 5 लाख समझे पाउंड या यूरो या डॉलर करेंसी ले लीजिए, बाप छोड़ के गया। अब क्या वो क्वेश्चन क्या है कि भाइयों ने वो सारा 5 लाख आपस में बांट लिया, क्या सोचकर कि हम चूंकि बाप के साथ काम करते थे तो ये पैसा भी हमारा हो गया, बहनों को कुछ नहीं दिया, 2-4 साल रहती हैं बहनें भी जज्बात में आती हैं, लेकिन उनको समझ आता है कि बाप के कारोबार पे बेटे भी फ्लरिश कर रहे हैं और कमा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। अब वो आपके पास आती हैं, सुने जी ये जरा थोड़ा सा मामला बता दें कि हमारे बाप की डेथ को 4 साल 5 साल हो गए हैं और पैसे सारे भाइयों ने बांट लिए, हमें तो कुछ नहीं मिला, तो हम भाई से मांगे। देखिए पैसा तो दिलों में दरार डालता है, सगी बहन भाई हो, शौहर बीवी हो, दोस्त रिश्ते हो, जहां पैसा आता है वहां दिल खट्टा होता है। खैर उनका क्वेश्चन जो था वो ये था कि अच्छा जो भाइयों का पैसा कारोबार चल रहा है सुलन, तो इसमें हमारा भी हिस्सा होगा, बहनों का हमें भी मिले, तो भाई को नाम ही नहीं ले रहे। मैंने कहा आप अपना सारा केस मुझे बताइए, तब जब मैंने उनसे बिठा कर लिखाया तो फिर मैंने उनके बताया कि आपके अब्बू के ऊपर तो 20 लाख कर्ज है, मिसाल है, छोड़ के तो सिर्फ $5 लाख गए हैं। कहती ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैंने कहा वो कर्ज जो ये मशीनें, ये जमीन, ये फ्लैट, ये जो भी करेंसी, वो कौन दे रहा किस्ते? कहती भाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप तो बच गई हैं, बात समझ रहे हैं? होना क्या चाहिए? कहते होना क्या चाहिए? तो मैंने कहा जिस दिन आपके वालिद की डेथ हुई, ये हाल, ये कमरा, ये कुर्सियां, मेज, सब किराए पे कर्ज पे थी। इन्होंने तो लोगों का 20 लाख देना है, छोड़ के तो बेचारे 5 लाख गए। आप क्या करें? इन सबको बेचें। ये 20 लाख की चीजों में कुछ ना कुछ उनका असल अपना भी तो होगा ना, ये बिक जाता बच, सब कुछ 20 लाख का देकर इसमें हो सकता है उनके हाथ में 5 लाख ही आ जाता। तो ये 5 और वो 5 जो कैश की सूरत में, ये 10 लाख आप बेटों बेटियों में बटना चाहिए था। लेकिन कौन करता? लोग कहते लो चलता कारोबार छोड़ दें। लोगों को चलता कारोबार समझ आता है, लेकिन लोगों को उसके अंदर ये जो सांप बिच्छू दौड़ते हैं वो नजर नहीं आते। और फिर मजे की बात बताऊं, ऐसा कारोबार जो इन बुनियादों पे खड़ा होता है ना, पहले तो मेरे भी मुंह से बात 40 साल की निकलती थी, लेकिन अब इतनी नहीं निकलती। अम्मा कहते हैं जिस चीज में सूद का पानी लग जाता है वो 40 ईयर से ज्यादा नहीं ठहरती। वो इंडस्ट्री है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, वो डूब जाती है। 40 ईयर इज डेड लाइन, हो सकता है 4 साल में डूब जाए। और ये अल्लाह का एहसान है कि दुनिया में डूब जाता है। लोगों की बीसियों कहानी है कि वो कहते हैं आज शुक्र करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, वो सारा जाया हो गया था, वो इधर लग जाता, उसने इसको भी खा जाना था। जैसे एक सेब जरा सा दाग पड़ जाता है ना उसको, तो आप देखें ना उठाएंगे ना, तो थोड़ी सी एक आध दिन में दूसरे सब सेब भी दागी होंगे। खराब एक खाना फ्रिज में रख दें, बाकी खाने को भी खराब कर देगा। तो ये ऐसा पैसा तो अल्लाह का शुक्र है निकल जाता है, खुद निकाल दें वरना खुद निकलता है। वो कहीं बीमारी की किस्त आएगी, वो कहीं बीमा पड़ जाएगा, कहीं गाड़ी टूट जाएगी, कहीं आप कहेंगे जी घर की छत लीक कर गई, ये हो गया, ये अल्लाह किस्तें डालता है। क्यों डालता है? कि चलो फिर इधर से बचाया था ना, उधर डालो, बचता एंड पे कुछ नहीं है। मैंने देखा लोग कहते हैं फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं आती। हमारी एक स्टूडेंट थी तो उनका गैस स्टेशन था वहां। अब मैंने खुद देखा है माँ बेटे बेटियां मशीनों की तरह काम करते थे, बस सो हार्ड वर्किंग। और उसमें चूंकि इंटरेस्ट था, जब पढ़ा तो उनको समझ आ गया कि नहीं रखना पीछे मियाँ के, पढ़ पढ़ा के बेच बचा के। सोचते क्या थे? कहते थे ये पिछले 10 साल से हम इस गैस स्टेशन को दे रहे हैं मेहनत भी, और पैसा जो आता है वो सारा इसी की किस्तें उतारने में लग जाता है। जो भी आपको खेल बताए किस्सा मुख्त उन कहता कि जब ये सारा बिक बका के कर्जे दे दिला के वापस आएगा, कुछ 2-2.5 लाख रुपया बच ही जाएगा जिससे हम कारोबार करेंगे। और आपको था कि जिस दिन वो गैस स्टेशन की चाबी देकर आए तो कितना उनको बचा? 0, एक पैनी नहीं उनके हाथ आई, बल्कि कहते हैं जान छुट्टी से लाख हो पाया। इतने ओवर ड्यूज इधर के उधर के डाल के कि उन्होंने अब नया बिजनेस करने के लिए उनके शायद कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी मेहनत के, लेकिन वो खुश थे कि जान छूट गई, अब हमने क्या करना है अपने ऊपर लेकर। तो बहरहाल आज उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा नासूर है। हमारी परेशानियां, हमारी टेंशनें, हमारी दुख तकलीफों का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ से गुजरता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अभी तक जितनी बात हुई इसमें से कोई सवाल है?
अगर खर्च के बारे में ये बोली थी कि कर्ज जब इंतकाल हो जाता तो उनके अमल रोक लिए जाते, तो उनके पहले वो कर्ज अदा करना होगा उनके इंतकाल पे, जिसके भी नाम पे कर्ज था, जब उनका इंतकाल हो उनका कर्ज देना चाहिए। तो वो सामने वाले मुझसे पूछे कि कर्ज का अदायगी का टाइम 30 साल है, 20 साल है, तो अभी बहुत टाइम है। तो उनकी बीवी चुका लेगी, बीवी जॉब करती है, तो फिर कैसे हो, कैसे उनके आमाल रोके जाएंगे?
देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, आपने उनको इधर आने की दावत क्यों नहीं दी? या आपका मुझे सवाल से ये लग रहा है कि आप डॉक्टर की दुकान पे आके कहती हैं डॉक्टर साहब वो मेरी खाला की बेटी का भी नाक बह रहा है, उनकी भी गोली। अगर दे विल फील दिस इज अ बिग इशू, दे शुड अटेंड दिस सेमिनार। जब भी कोई ऐसी बात करता है ना, उसको कभी आपकी बात समझ नहीं आएगी। अब लेकिन इनकी बात से हम एक दो बातें ले लेते हैं जो आपके सवाल भी हैं, कुछ लेके फिर आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा हम इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करें। आजकल दुनिया किस इस्लामी मुल्क में बिला सूद बैंकारी का निजाम है? बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो मेरा ख्याल है दुनिया के हर मुल्क में ऐसी ऑप्शंस हैं। यू नीड टू फाइंड आउट। क्या मुसलमानों को अपने रहने वाले मुल्कों के कवानीन मानने का हुक्म है? बिल्कुल हुक्म है, माने। शर्त एक है कि कोई हुक्म कुरान और सुन्नत की बुनियादी चीजों से ना टकराए। बात समझ गए? वो उलिल अमरी मिनकुम, यानी आप जहां रहते हैं जिस मुल्क में रहते हैं आप रेड लाइट पे रुकें, बिल्कुल रुकना चाहिए आपको, जो भी वो आपको कहते हैं आपको टैक्स देना है जो भी करना है कीजिए, लेकिन वो किसी ऐसी चीज पे आपको डाल देते हैं कि जिसमें आपको नहीं, कि आप कहते हैं फिर क्या करें, तो वी नीड टू स्ट्रगल फॉर दैट। जितने मुसलमान हम अब माशाल्लाह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अगर आज तक हम फाइट कर रहे होते तो इंटरेस्ट तो हमने इन मुल्कों से खत्म करवा दिया होता। हम अपने कब्रस्तानों के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे अलग कब्रस्तान हो, अब तो शायद लोग ये भी नहीं करते, लेकिन चलिए अगर कोई ऐसे कर भी लेते हैं लोग, तो जिंदगी भर तो हम उनके साथ लगे रहते हैं। तो डेफिनेटली जिस मुल्क में रहें अभी नीड टू बी बहुत पीसफुल शहरी रहें, उनके भी रूल्स को माने, बल्कि मैं सोचती हूँ कि नॉन मुस्लिम लोगों को अगर ये अंदाजा हो जाए ना कि पढ़ने के बाद कितनी सेल्फ असेसमेंट शुरू हो जाती है कि आपके अंदर अब जंग नहीं लगी हुई, कहीं टैक्स तो नहीं देना, कहीं इंश्योरेंस के पैसे तो नहीं हम मार के बैठे हुए, कहीं को किस्तों में नहीं है कि नहीं, सच बताएं। तो ये आपके इस मुल्क को आपके इस कोर्स के करने का फायदा हो रहा है। लोगों को अगर पता चल जाए ना कि इस्लामी तालीमात क्या सिखा रही है इधर बिठाकर, बिलीव मी गवर्नमेंट आकर स्पॉन्सर करे आपके निदारों को, हमें खुद सा पैसा जोड़ के लोगों को किराए ना देने पड़े, यकीन कीजिए। अगर उनको पता चले कि कितने मुहज्जब शहरी बन जाएंगे, यानी ये जो आपको मैंने बीच में एक बात छेड़ी थी उसका थोड़ा सा बता, किसी का भी पैसा देना है आपने अब गवर्नमेंट के खातों में ना, वो खुद ही रो रो के चुप कर जाएंगे, हम 5 रुपए की किस्तें लगा देंगे, हम 20 का डाल देंगे, हम नहीं कर, आप नहीं दे सकते और बात है, ये मुल्कों वालों ने सहूलत दी होती है ना, इफ यू कैंट पे सट लेट मी नो हाउ मच यू कैन पे, यही है ना, तो फिर आप खुद से पूछिए हाउ मच आई कैन पे, फिर कोई जरूरी है कि आप हर साल पाकिस्तान जाएं और 2-4 लाख का बिल बनाकर टिकटें खर्च करके कपड़े बनाकर आए, नहीं, यू कैन अफोर्ड दिस एंड यू कैन अफोर्ड दैट, राइट। तो ये एक पतली धार है, क़यामत के दिन आपको रिवायत सुना दी है कि बेजान चीजों को अल्लाह जुबान देगा, यानी हो सकता है IRS बोलते हैं यहाँ टैक्स, हो सकता है क़यामत के दिन IRS की एक जुबान हो और आके वो पूछे, अब उसको उस दिन क्या मिलना है, लेकिन फिर उस दिन नेकियां कम होंगी, वहां मामला नेकियों बदियों में तुलेगा। तो कवानीन को इस्लामाइज करें, और जब मुस्लिम प्रैक्टिकल होते हैं तो वो मुल्क इस्लामाइज होते हैं। अब जो जुमला बोलने लगी हूँ बड़े शौर से बोलूंगी, बिलीव मी, अगर आज हम जितने मुसलमान दुनिया में 4 बिलियन 6 बिलियन 7 जो भी हैं, अगर हम सहाबा की तरह कुरान और सुन्नत पे अमल कर रहे होते, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया पे इस्लाम होता, पूरे पूरे नाम लेकर मुल्कों के कह लीजिए, उधर इस्लाम की बरकतें जा चुकी होती, बट बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, बिकॉज वी आर जस्ट मजबूर, क्या करें ये है वो कहते हैं जब इनको नहीं किया तो हमें, अब एक बंदा जो बोलेगा न कारखाने में तो होती की आवाज चुप चुप बैठो, तो जब 100 बोलेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 1000 बोलेंगे और होगी, जब एक मुल्क में 1 लाख मुसलमान रहते वो सब खड़े हो जाते हमें नहीं चाहिए ये, तो सोचना पड़ जाएगा उनको, बट वो कहेंगे चलो भाग जाओ हमारे मुल्क से, आप यही कहते हैं ना, वो कहेंगे हम तो शुक्र करते हैं हमें ये जगह तो दे रहे हैं। तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ बेनिफिशियल, आप अपना किरदार अपना मजबूत इतना खूबसूरत करें कि वो लोग आपको वीजे भेज भेज के बुलाएं, ना कि आपको झूठे नकली कागज बना के इधर आना पड़े, बात समझ आ गई। वी नीड टू डिवेलप द करेक्टर, अगर हम मुस्लिम्स के किरदार स्ट्रांग हो ना, तो जैसे जेल में से बादशाह ने यूसुफ इस्लाम को बुलवाकर अपने खजाने की चाबी दे दी, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मुसलमान यूसुफ वाला किरदार इख्तियार कर ले ना, मोहसिन बन जाए, तो हर मुल्क का कम अज कम वजीर खजाना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रेजर, ये मुस्लिम होता है रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, वो कहेंगे हम ये सिर्फ मुस्लिम्स को देंगे क्योंकि यूसुफ को पता था कि कहत के दिन कैसे मैनेज करने हैं, तो वो हमारे मुस्लिम बच्चों को बुलाते कि ठीक है हम अपना लॉ रखें, हम बाइबल पढ़ें, तौरात पढ़ें, गीता पढ़ें, कुछ नहीं, बट हमारे मनी अफेयर्स ये मुस्लिम बच्चा करेगा, बिकॉज वी नो दे नो बेटर देन अस। ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक जाल फैसला ना, ये मेरी आपकी बेअमली से पहले है, वरना बात इतनी बड़ी नहीं है। अगर कोई जायज के लिए कुछ अरसे के लिए इंटरेस्ट पर कर्जा ले और इसे जल्द अज जल्द मकरूह समझ उतारने की कोशिश करे, तो इस पर मेरी क्या राय है, पहली बात है कि मेरी राय ना कभी पूछा करें, जिन्होंने भी सवाल पूछा है, कुरान और सुन्नत क्या कहता है, अल्लाह की कसम कभी किसी दीन वाले से उसकी राय ना पूछे, मरवा खुद भी मारे जाएंगे, यही तो हम नाम लेना चाहते हैं, किसी की राय पता चल जाए हम उनका फतवा दिखाकर सारी दुनिया में जाके जायज के फतवे दें, मेरी राय कुछ नहीं है। अब हम अपनी बात करें तो जरा उम्र की बात देखें, एक शख्स का झगड़ा हो गया था किसी बात, पढ़ेंगे आप लोग वाकई इंशाल्लाह सूरत निसा में आएगा, तो यहूदी भी था और एक तरफ मुसलमान था, उस वक्त दो अदालतें थी मदीना में, एक मुसलमानों की अदालत एक यहूद की थी। मुसलमानों की अदालत के अली नबी सल्लम थे, जब आप नहीं होते थे वहां आउट ऑफ द कंट्री या टाउन होते तो उमर आप सब थे यानी आपके नायब थे, और दूसरी तरफ काब बिन अशरफ था, होता तो मुस्लिम मुस्लिम अदालत में चले जाते, यहूदी का होता तो वो काब बिन अशरफ के पास चले जाते। लेकिन इशू क्या था कि एक मुसलमान है एक काफिर है, अब किधर जाया जाए? यहूदी बावजूद इसके कि यहूदी है लेकिन वो अपनी अदालत में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि उसको पता था कि हमारे उलमा पैसा खा मेरे खिलाफ फतवा देंगे, और यहूदी सच्चा था मुसलमान झूठा था, कसूर उसका था। तो मुसलमान अब ये तो नहीं कह सकता था जियो अदालत में चले, तो आ गए इधर नबी सल्लम के पास। आपने फैसला किसके हक में दिया? यहूदी के हक में दी। क्यों भाई? सच्चा था। कौन उमार सादिकीन, जब वहां से निकले तो वो जो मुनाफिक ही था ना मुसलमान कह लीजिए, और जब जान पे पड़ती है तो निफाक आ ही जाता है। कहने लगा क्या ख्याल है जरा हजरत उमर से भी ना पूछ लें। हालांकि देखिए उमर के पास अथॉरिटी भी थी, लेकिन वो कब थी? जब नबी सल्लम शहर में नहीं, तो इसका दिल में खुदबूत थी ना कि शायद मेरी जान और बच जाए। और इस मुसलमान को उम्मीद क्या थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हो चुके बहुत इस्लाम दोस्त है ना, तो ये तो लफ्ज यहूदी सुन के गुस्से में आ जाएंगे, तो फैसला मेरे हक में, चलो भी चलते हैं। खैर गए यहूद ने जाकर वहां बात की, जी उमर साहब आपके एक मुकदमे के लिए क्या हुआ है बताओ जी, भाई ये मेरी जमीन इसका पानी इसकी बातें ये वो, फैसला कर दे। अभी ये बात करके वो खामोश नहीं हुआ कि एक छोटा सा जुमला बोल दिया उस यहूदी ने, वैसे आपके पास आने से पहले हमारा फैसला नबी सल्लम ने मेरे हक में कर दिया। अच्छा नबी सल्लम का फैसला सुन के आए हो मेरे पास? अच्छा ठीक है मैं भी आता हूँ। अंदर गए तलवार लेकर आए उमर और उस मुसलमान की गर्दन काट दी कि मोहम्मद सल्लम की राय के आगे तो मेरी राय पूछते, और इस पे मुकदमा बन गया। अब उमर पे मुकदमा बन गया, किसने कर दिया? मुसलमानों ने कर दिया कि देखे देखे मुसलमान को मार दिया, उमर को क्या हक है कि किसी मुसलमान को कत्ल करे? अब क्या हुआ? अब हजरत उमर अल्लाह के नबी की अदालत में आ गए। ये उमर आपने क्या किया? अल्लाह के नबी इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल, तो मैंने इसको मुर्तद समझते हुए मारा। भाई कैसे मुर्तद हो गए? अल्लाह के नबी आपकी बात के ऊपर राय पूछ रहा। आज ये बातें करने वाले कितने लोग हैं दुनिया में, बात समझ आ रही है आपको? नबी सल्लम कैसे इस बात पे बोलते? कुरान में उतर गया फला व रब्बी कला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा युहक्किमूनका फी शजरा बैनहुम, अल्लाह की कसम ये कभी मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आपको ये बातों में हकम नहीं मान लेते जिसमें इनके झगड़े होते हैं। तो नबी की बात कोई छोटी बात है? तो लिहाजा अल्लाह के नबी का इस बारे में क्या है? देखिए अब आपका सवाल बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है कि जायज जरूरत, तो पहले पूछिए जायज जरूरत क्या है फर्स्ट थिंग, फिर दूसरा कुछ अरसे के लिए, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कुछ अरसे से आपकी क्या मुराद है, ठीक है? तीसरा है कि इंटरेस्ट पर कर्जा ले और इसे जल्द अज जल्द मकरू समझकर उतारने की कोशिश करें, तो इसके बारे में तो यही आ रहा है कि इसमें डाल दें मक्खी, इसमें डाल दें काकड़ोच और मुझे कहें पी लें बस मकरू समझ लें, तो मेरे हलक से तो नहीं उतरेगा ना, तो मेरे हलक के जवाब मिल गए। और वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, आप ही की क्लास के लोगों की बात है, लास्ट वीक में बात हो रही थी ना इधर घर की कर्ज की, तो यहां बैठे उनका सेल्फ असेसमेंट कोई अपने अंदर चल रहा था कि हम पे क्यों कर्ज है। फिर फायजा ने कोई बात सुनाई अपनी के इन्होंने अल्लाह से कहा मुझे मार्च में पे करना है, अल्लाह ने मार्च तक गैब से सबाब डाले, अल्लाह की कसम आपकी उस साथी का कर्ज कल दूर हो चुका है, उसने लास्ट फ्राइडे यहां बैठ के अल्लाह से कहा था। अल्लाह ये लोग क्यों कह देते हैं कि हमने अल्लाह से कहा अल्लाह ने कर दिया, तो अल्लाह ताला मैंने अगले वीक तक कर्ज से निकलना है और कोई सबब नहीं कुछ नहीं, तो कल मेरे तक शेयरिंग आ गई उनकी, उन्होंने कहा कहां से पैसे आए हैं कि वो सोच रहे थे कि शायद हमने देने हैं अभी और जमा कर रहे थे उस डिपार्टमेंट से और जो भी टैक्स वैक्स के पैसे या अनएक्सपेक्टेड पैसे उनके, और एग्जैक्टली कितने आए राउंड अबाउट जितना उनके ऊपर कर्ज रह गया हुआ था बाकी। मैंने कहा बेटा आपने अल्लाह को अब आजमाया है, मैंने तो बहुत पहले से आजमाया हुआ है, हम नहीं लेने आते अल्लाह से, सीधी सी बात है जी। ये आखिरी सवाल इस पे, सूद देने और सूद लेने के गुनाह की शिद्दत में कोई फर्क है कि नहीं? आप जरा इस जुमले को सुनिएगा, हालांकि अभी सूद का टॉपिक नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो आ ही रहा ना, सूद देने और सूद लेने के गुनाह में कोई फर्क है कि नहीं? आप लफ्ज़ सूद को जिना से बदल लें। अब मैं बोल के बढ़ूं, जिना करने और जिना करवाने के गुनाह की शिद्दत में कोई फर्क है कि नहीं? आप बताइए मुझे, जवाब मिल गया आपको? कोई कह मैं जिना कर तो नहीं रही, अब करवा ही रही हूं ना, फिर अब क्या करेंगे? कत्ल करने और कत्ल करवाने के गुनाह में कोई फर्क है? वल्ला ही कोई फर्क नहीं है। अब आप कहेंगे कुरान में तो लिखा है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, खाते हैं सूद को, उनका ये हाल है, तो जो खिलाते हैं उनका जिक्र कोई नहीं। तो हदीस ने क्या कह दिया कि चार चीजों पे सूद की वजह से लानत है, आकिलुहु मुकिलुहु कातिबुहु व शाहिदुहु, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, उसकी गवाही देने वाला, उसको लिखने वाला। अब आप क्या कहेंगे? फिर आप कहते नहीं ये तो कुरान है ना, वो तो हदीस है। तो जो बात कुरान से साबित हो सकती है वो हदीस से भी साबित हो सकती है। मत सोचिए कि कुरान में चूंकि याकुलून का लफ्ज आया है तो बस खाना ही बुरा है। हदीस में हाँ प्यार से कह दिया कि खिलाने वाले को भी गुना, तो इट्स फाइन। शराब के ऊपर 10 लानते हैं, आपको पता है? शराब पे पीने वाले, पिलाने वाले, उठाने वाले, जिसके लिए ली जा रही है, उसके लिए, फलां के लिए, तो आप कहते इट्स फाइन। हदीस में ना कुरान में होती तो मानते। फिर सबसे बड़ी बात है लोग सूद के नाम पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि अच्छा जैसे शराब की बात आती है तो बाज़ लोग कहते हैं देखो ना हराम का लफ्ज भी तो नहीं है ना, यही कहा गया ना नफी हिमा, उसका नफा इनके इसम से कम है या गुना इसका ज्यादा है या वो है, तो लफ्ज हराम तो नहीं, तो सूद पे तो हराम का लफ्ज है। ये आप आयते पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। लेकिन यह है कि जितना बच सकते हैं बचें। अब आप कहते हैं देखिए याद रखिए ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह आपके लिए बचत का कोई रास्ता निकाल देगा अगर आप किसी जगह फंस गए ना, अल्लाह कहीं और आपको कोई झटका दिला दिलू के बचा लेगा, लेकिन प्लान चाहिए आपका। अब इस पे 10 सवाल आप और कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमें इस चीज़ पे गौर व फिक्र करना है कि हम वाकई कहाँ खड़े हैं। यह आज उम्मत मुस्लिमा को अपने लिए लेने की ज़रूरत है, तो कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि हम इन चीज़ों के फेर में आए हों।